नमस्कार भारत 29 नवंबर दिन गुरुवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। देश के विभिन्न भागों से अपनी मांगे लेकर आ रहे किसान दिल्ली की सीमा तक पहुंचे।
हाँ जी, हम इधर यहाँ आंदोलन क्रांति के लिए आए, क्योंकि हम इधर वहाँ पिछड़े वर्ग किसान व्यक्ति है, वहाँ अकाल पड़ता है।
फ्रांस के एनजीओ ने उठाए रफाल विमान सौदे पर सवाल, क्या हो सकता है आगे?
ये जो नेशनल प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस है, अब इसमें वो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करेंगे देखने के लिए कि कुछ गलत तो नहीं किया हुआ है।
जानेंगे राजस्थान चुनावों में भाजपा से क्यों नाराज है राजपूत समाज।
राजपूत समाज के साथ जितना कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अभूतपूर्व कुठाराघात हुआ है हमारे साथ में, जबकि राजपूत समाज शुरू से कांग्रेस के विरोध में रहा।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार विकास त्रिवेदी से। भारत के अलग अलग राज्यों से किसान अपनी मांगों के साथ आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। कई किलोमीटर की पैदल यात्रा कर दिल्ली आए ये किसान अगले दो दिन दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इन किसान संगठनों की प्रमुख मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि और कर्ज माफी शामिल है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का कहना है कि यूरोपीय संघ से बिना समझौते के बाहर निकलना देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। बैंक ने कहा कि पाउंड की कीमत में गिरावट, महंगाई और जीडीपी पर असर होने से ब्रिटेन की हालत 2008 की आर्थिक मंदी से भी बदतर हो जाएगी। सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोजी के मुद्दे पर अमेरिका में कांग्रेस और ट्रंप प्रशासन के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं। खाशोजी केस को लेकर हुई एक सुनवाई में CIA की निदेशक मौजूद नहीं रहीं। इस पर अमरीकी सीनेट के सदस्यों का कहना है कि ये मामले को छिपाने की कोशिश है। CIA निदेशक गीना हस्पल ने सऊदी पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या के टेप्स को सुना है, लेकिन वो इस केस से जुड़ी सुनवाई में जवाब देने के लिए हाजिर नहीं हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि अगर अमेरिका सऊदी की मदद बंद करेगा तो इससे यमन में सीज फायर की संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। माना जाता है कि CIA निदेशक को खाशोजी की हत्या के बारे में अच्छी खासी जानकारी है। उनकी गैर मौजूदगी पर डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद डेक डर्बिन ने सवाल उठाए।
The most persuasive presence in this briefing was the empty chair.
सुनवाई में गिना हिस्पेल को मौजूद रहना चाहिए था। हमें बताया गया कि वो व्हाइट हाउस के निर्देश पर सुनवाई में शामिल नहीं हुई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हम में से बहुत कम लोग इस बात को मानेंगे कि खाशोजी की हत्या के बारे में प्रिंस सलमान को जानकारी नहीं थी। ये थे डेक डार्बिन के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। हमले में 19 लोग घायल भी हुए हैं। तालिबान का कहना है कि यह हमला एक ब्रितानी सुरक्षा कंपनी को निशाने पर रखकर किया गया। नार्वे के शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन लगातार चौथी बार विश्व चैंपियन बन गए हैं। कार्लसन के सामने अमेरिका के फेबियानो करुआना थे। कार्लसन ने उन्हें 4 में से 3 खेल में शिकस्त दी। ये मैच लंदन में खेला गया। कार्लसन को शतरंज का मोजार्ट भी कहा जाता है। साल 2013 में कार्लसन ने 5 बार के विश्व चैंपियन रहने वाले विश्वनाथ आनंद से खिताब छीना था। लंदन में जीत के बाद कार्लसन ने प्रेस वार्ता में खुशी का इजहार किया। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। ये थे विश्व शतरंज विजेता कार्लसन के शब्द। अमरीकी प्रशासन ने साइबर हमले के आरोप में 2 ईरानी युवकों पर मामला दर्ज किया है। इन युवकों पर अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और सरकारी संगठनों पर साइबर हमला कर करीब $60 लाख की उगाही करने का आरोप है। माना जा रहा है कि इन हमलों से करीब $30 मिलियन का नुकसान हुआ है। यूक्रेन के जहाज़ों को कब्जे में लेने की यूरोपीय संघ ने कड़ी निंदा की है। हालांकि रूस पर नए प्रतिबंध लगाने को लेकर यूरोपीय संघ में सहमति नहीं बन पाई है। यूरोपीय संघ ने रूस से यूक्रेन के नौसैनिकों को फौरन रिहा करने की मांग की है। बीते रविवार को रूस ने यूक्रेन के 3 जहाज़ों को क्रीमिया के पास कब्जे में लिया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस पर कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति चुनावों में अपनी रेटिंग बढ़वाने के लिए ये विवाद खड़ा कर रहे हैं। जॉर्जिया में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए हो रहे चुनाव में सत्तारूढ़ जॉर्जियन ड्रीम पार्टी की उम्मीदवार सालोम जुराबिश्विली जीत की ओर बढ़ रही हैं। BBC समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। आज सूरज की तपिश जब धीरे धीरे तेज हो रही होगी तब देश के कोने कोने से आए हजारों किसान और खेतीहर मजदूर दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंच रहे होंगे। बढ़ता कर्ज, लागत से कम पर फसल के बिकने जैसे कई मुद्दों को लेकर ये किसान दिल्ली आ रहे हैं। हमारे संवाददाता फैसल मोहम्मद अली कल देर रात किसानों की एक जत्थे से मिलने दिल्ली के बिजवासन इलाके में पहुंचे और उनके हालात का जायजा लिया।
पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, दमदम और दूसरे इलाकों से आए किसान और मजदूर तो मंगलवार शाम को ही दिल्ली आ गए थे। उड़ीसा और राजस्थान का दल भी कल राजधानी पहुंच गया। हां, कर्नाटक के किसानों और खेतीहर मजदूरों के आने में कुछ देरी हो रही थी ट्रेन के लेट चलने की वजह कर, लेकिन लंबे सफर ने किसानों का मनोबल किसी भी तरह कम नहीं किया था। आज सुबह बिजवासन से रामलीला मैदान का 24 किलोमीटर का लंबा सफर पैदल तय करने को वो पूरी तरह तैयार दिखे। पिछले चंद महीनों में ये तीसरी बार है जब कृषकों और खेतीहर मजदूरों को राजधानी में बैठे राजनीतिक आकाओं को जगाने के लिए दिल्ली का रुख करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल से आई संध्या मंडल कहती हैं,
खेती के बात माने जल से माने जो सरकार दे माने आमादेर माने डांगा जमी है तो पानी बेसी लगता है, ते पानी लगता है तो बेसी डीजल खर्चा है, माने जे खर्चा करता है माने वैसा दाम नहीं होता है।
खेती की बढ़ती लागत और किसानों को फसल की लागत से कम कीमत मिल पाना भारत के कृषि संकट की बड़ी समस्याओं में से एक है। किसी किसान का पूरे ट्रैक्टर की ट्रॉली भर टमाटर को सड़क पर फेंक कर चले जाना शायद एक बड़े वर्ग के लिए तस्वीर भर हो, लेकिन यही हालात एक किसान को पहले तो कर्ज में ढकेलते हैं और फिर जब यही हालात साल दर साल जारी रहते हैं तो उसके पास अपने हाथों अपनी जान लेने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 1995 से 2015 के बीच यानी पिछले 20 सालों में 3 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। सर पर बंधी चुनरी की पगड़ी साफ कर देती है कि वो राजस्थान के हैं। ढेरा राम अपना घर नागौर के तेतरी गांव बताते हैं। उनके पास 5 बीघे खेत हैं, लेकिन उन्हें मजदूरी भी करनी पड़ती है।
खेत है हमारा तो भी बड़े राम तो बड़ी खेती, हमें भाई भाई और सब नारा नार हो गया, जमीन हमें कमी होगी, कोई का 10 बीघा, कोई का 5 बीघा, कोई के 20 बीघा।
बीकानेर के नौखा तहसील के प्रेमलाल कहते हैं,
हाँ जी, हम इधर यहाँ आंदोलन क्रांति के लिए आए, क्योंकि हम इधर वहाँ पिछड़े वर्ग किसान व्यक्ति है, वहाँ अकाल पड़ता है, जो कुछ भी अनाज होता है वो क्या अपनी मन मर्जी से ये कम रेट में जाता है, ये हमारे को पूरता नहीं है, क्यों जो खेती करते हैं उसमें दोनों घाटा लगता है, इसलिए हम हमारी ज़िंदगी सही ढंग से जी नहीं पाते हैं, न बाल बच्चों को पढ़ा सकते हैं, नहीं सही व्यवस्थित जी सकते हैं।
ओडिशा के बिरघर के सुभाष गई कुछ ही देर पहले स्टेशन से बिजवासन के कम्युनिटी हॉल पहुंचे हैं। वो कहते हैं कि किसानों के बीमे की बात एक धोखा है।
यहाँ किसानों को ठीक दर दाम नहीं मिल रहा है, किसान जो रोग पोग लगता है वहाँ से भी वो क्या है कि इंश्योरेंस नहीं पा पाता है, और जो धान बिचरता है वो दलाल के पास चला जाता है और मंडी में भी खुद नहीं बेच पाता है, तो इसलिए आंदोलन करना है।
29 और 30 नवंबर को होने वाली किसान मुक्ति मोर्चे का आयोजन ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति ने किया है, जो 200 से अधिक किसान संगठनों ने मिलकर तैयार की है। आज दिन में रामलीला मैदान में जमा होने के बाद किसान 30 नवंबर को संसद भवन तक एक रैली निकालेंगे। किसानों की मांग है कि उनकी समस्याओं पर बहस के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और किसानों की कर्ज माफी और फसल की कीमतों पर जो 2 बिल सदन में पेश हो चुके हैं उन्हें पारित किया जाए। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
अब तक भारत में रफाल लड़ाकू विमान सौदे में विपक्ष घोटाले के आरोप लगाता रहा है, लेकिन अब फ्रांस के एक गैर सरकारी संगठन ने इस सौदे में घोटाले की आशंका जताते हुए वहां के लोक अभियोजक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। कितनी गंभीर है ये शिकायत और इस पर आगे क्या कार्रवाई हो सकती है, जानने के लिए बीबीसी संवाददाता संदीप सोनी ने पेरिस में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार वैजू नरावणे से बात की।
प्रशांत भूषण जी ने और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने एक कंप्लेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली हुई है इंडियन कोर्ट्स में कि यहाँ पर कुछ करप्शन था, कि इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे दिए गए थे। इसके ऊपर उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंडियन कोर्ट में डाला था और उस बेसिस पे कि इंडिया में इस मामले पर शंका है, यहाँ की जो शर्पा एसोसिएशन है जो इकोनॉमिक क्राइम के खिलाफ लड़ती है, उन्होंने यहाँ का कोर्ट जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कोर्ट है उनके यहाँ कंप्लेंट डाली है कि किस तरह से इस डील को अग्रीमेंट हुआ है इंडिया और फ्रांस की, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है या नहीं है उसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर खुलासा होना चाहिए। तो ये जो शर्पा एसोसिएशन है ये एंटी करप्शन मामलों पर इन्वेस्टिगेशन करता है और लीगल एक्टिविटी लेता है। तो ये जो कंप्लेंट शर्पा ने की थी वो 26 अक्टूबर को उन्होंने ये कंप्लेंट फाइल की है नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस।
फ्रांस में इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है?
बहुत कम गंभीरता से लिया जा रहा है, एटलीस्ट मीडिया में इस मामले के बारे में यहाँ पर बिल्कुल चर्चा है ही नहीं। यहाँ के जो मीडिया है वो काफी बार अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और ये जो मीडिया है जिसने ये पब्लिश किया है उसका नाम है मीडिया पार्ट, वो बिल्कुल इन्वेस्टिगेटिव टाइप ही वेबसाइट पोर्टल है। लेकिन बाकी जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं फ्रांस में या टेलीविजन है, सोच लीजिए जैसे लमोंड, फिगारो, इको, जो भी बाकी के न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने इस मामले को लिया ही नहीं है या बिल्कुल कम ट्रीटमेंट दी है।
आगे इस मामले में क्या होने की संभावना देखती हैं आप?
अब देखते हैं, ये जो नेशनल प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस है अब इसमें वो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करेंगे देखने के लिए कि कुछ गलत तो नहीं किया हुआ है, मामला ठीक है या नहीं है, लेकिन उसके लिए तो बहुत देर लग सकती है। उनके पास कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं है, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि ये 3 महीने में ही इनको रिपोर्ट देना चाहिए, उनके ऊपर टाइम की कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो ये 1 साल ले सकते हैं, 2 साल ले सकते हैं।
ये थी पेरिस में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार वैजू नरावणे। अब आते हैं चुनावी राज्यों की ओर। राजस्थान में राजपूत समाज पारंपरिक तौर पर भाजपा का साथ देता रहा है, लेकिन अब राजपूत संगठनों का कहना है कि समाज भाजपा से नाराज है और उसे वोट नहीं देगा, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा का दावा है कि राजपूत उससे नाराज नहीं है। हालांकि राजपूत कांग्रेस से भी खुश नजर नहीं आते हैं। सुनिए जयपुर से नारायण बारेट की रिपोर्ट।
जय शिवा सरदार की, पत्थर को भी कर दे पानी।
जाति की बात आती है तो भुजाएं फड़कने लगती है और वे अपने कीर्ति पुरुषों के जयकारे लगाने लगते हैं। उनके पास अतीत का गौरवगान है और युद्ध की गाथाएं भी, लेकिन इस चुनावी लड़ाई में राजपूत संगठन बीजेपी के प्रति अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। जयपुर में श्री राजपूत सभा 8 दशक पुरानी संस्था है। इसके अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा ने बीबीसी से कहा, बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं है। वे इसकी वजह बयान करते हैं।
समाज के साथ जितना कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अभूतपूर्व कुठाराघात हुआ है हमारे साथ में, जबकि राजपूत समाज शुरू से कांग्रेस के विरोध में रहा। कांग्रेस कभी भी राजपूत समाज को अपना नहीं मानी और न कभी राजपूत समाज कांग्रेस के साथ रहा। जसवंत सिंह जी का टिकट डिनायल, इधर भैरू सिंह जी की फैमिली की इग्नोरेंस, भैरू सिंह जी का इग्नोरेंस।
इतिहासकार प्रोफेसर आर एस खंगारोत कहते हैं कि समाज अपनी राजनीतिक पसंद को लेकर असमंजस में है, क्योंकि सियासी पार्टियां अपेक्षा पर खरी नहीं उतरी।
समाज के लोगों ने सेल्फ रेस्पेक्ट को और आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखा है। पॉलिटिकल पार्टीज चाहे कोई भी रही हो, उन्होंने दे हैव टेकन दिस कम्युनिटी फॉर अ राइड। राजपूत कम्युनिटी के पास इस समय एक स्ट्रांग लीडरशिप की कमी है और स्ट्रांग लीडरशिप की कमी के कारण बहुत सारे जो अम्ब्रेला ग्रुप्स हैं वो बन गए हैं और वो दिशाहीन दिखाई देते हैं।
पिछले 5 साल में कई मौके आए जब राजपूत अपने प्रतीक चिन्हों के साथ सड़कों पर आए और विरोध में मोर्चे निकाले। राजपूत समाज के लोकेंद्र सिंह कालवी ने बीबीसी से कहा, समाज बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने समाज की मांगों को अनसुना कर दिया। राष्ट्रीय करणी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेडी कहते हैं,
राजपूत समाज उपचुनाव हुए थे उसमें खुला समर्थन कांग्रेस को दिया था और हमें कांग्रेस से उम्मीद थी कि कांग्रेस राजपूत समाज को टिकटें देगी, प्रतिनिधित्व देगी, पर जब टिकटों का रिजल्ट आया, टिकटें आई, तो उसमें जो हमेशा होता है वही काम हुआ। अब हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, हम व्यक्ति विशेष के साथ रहेंगे।
सत्तारूढ़ बीजेपी ने इस बार 26 राजपूत प्रत्याशियों को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने राजपूत समाज के एक दर्जन उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। राज्य बीजेपी के महामंत्री वीरमदेव सिंह ने बीबीसी से कहा, कोई कुछ भी कहे, राजपूत समाज अब भी बीजेपी के साथ है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं,
सभी समाज के सभी वर्गों को साथ में लेके हम बात करते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी नेता के बारे में या किसी भी वर्ग के बारे में जाति और धर्म की राजनीति पे ध्यान नहीं देना चाहते।
चुनाव वो मौका है जब कोई सियासी पार्टी अपनी ताकत को तोलती है। अब इसमें यह भी महत्वपूर्ण हो गया है कि कौन जाति किसके साथ खड़ी है। नारायण बारेठ, बीबीसी जयपुर।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
श्रोताओं, अब समय है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहां का। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया है। तनाव की शुरुआत रविवार को उस वक्त हुई जब रूस ने यूक्रेन के 3 जहाजों पर कब्जा कर लिया था। इसे लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस की निंदा की है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच तकरार का ये इकलौता मुद्दा नहीं है। अमरीकी चुनावों में दखल के आरोपों से लेकर सीरिया की जंग तक पश्चिमी देश रूस को लगातार कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। रूस पश्चिमी देशों के मुकाबले आर्थिक तौर पर कमजोर है, फिर भी वो उन्हें चुनौती कैसे दे रहा है, जानिए दुनिया जहां में वात्सल्य राय से।
दुनिया जहां। आजोव समंदर के पानी का अशांत होना कोई नई बात नहीं, लेकिन रविवार को समंदर में हुई हलचल की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। अगले ही दिन हजारों नॉटिकल मील दूर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई और वहां अमरीकी राजदूत निकी हेली रूस को कटघरे में खड़ा कर रही थी। अमरीका और दूसरे पश्चिमी देशों की नाराजगी की वजह रविवार को यूक्रेन के 3 जहाजों के खिलाफ रूस की ओर से की गई कार्रवाई थी। रूस ने क्राइमिया के तट के करीब से गुजरते इन 3 जहाजों पर कब्जा कर लिया और क्रू के 23 सदस्यों को पकड़ लिया था। यूक्रेन और पश्चिमी देशों की आपत्ति के उलट रूस की दलील है कि यूक्रेन के जहाज अवैध रूप से उसके अधिकार वाले समुद्री इलाके में दाखिल हुए थे। यूक्रेन और रूस के बीच विवाद नया नहीं है। साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद आजाद हुए यूक्रेन का झुकाव पश्चिमी देशों की तरफ है और रूस इसे खतरे के तौर पर देखता है। साल 2014 में रूस ने क्राइमिया पर कब्जा किया, तब से दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हैं। रूस और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जानकार प्रोफेसर अनुराधा चिनॉय कहती हैं कि अरसे से चले आ रहे विवाद की वजह रूस की वो चिंताएं हैं जिन पर पश्चिमी देशों ने ध्यान नहीं दिया।
रूस की समझ ये है कि अपना बॉर्डर नेटो के देश हैं, उनके बीच में कोई कॉरिडोर या कोई बफर ना हो तो नेटो धीरे धीरे उनको भी तोड़ देगा। जब उन्होंने सोवियत संघ को खत्म किया तो एक प्रॉमिस था कि नेटो इतना आगे ना आए उनके बॉर्डर तक, पर जो फॉर्मर ईस्ट यूरोप के देश थे वो धीरे धीरे नेटो के हिस्से बन गए। फिर यूक्रेन में एक बहुत राइट विंग पार्टी आ गई जिसने जो एथनिक रूसी लोग थे उन पे दबाव डाला, माइनॉरिटी और मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स शुरू कर दी।
3 साल पहले तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में रूस 90 नंबर पर था, अब वो 12वें पायदान पर फिसल गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों के लिहाज से उसके संसाधन घट रहे हैं। रूस में क्रोनिक कैपिटलिज्म, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ने की चर्चा लगातार होती है। साल 2000 से कभी राष्ट्रपति और कभी प्रधानमंत्री के रूप में देश की अगुवाई कर रहे व्लादिमीर पुतिन ने देश को एकजुट किया है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर दिक्कतें बढ़ रही हैं। तमाम दुश्वारियों के बाद भी रूस खुद को महान शक्ति के तौर पर देखता है। सीरिया की जंग से लेकर तेल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले खेल तक रूस का दबदबा बढ़ रहा है। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल को सुनिए।
इन्फ्लुएंस तो उनका बढ़ रहा है, ये तो पक्की बात है, क्योंकि जो उनकी इंटरवेंशन हुई सीरिया में तो उसने ये बताया और ये सिग्नल किया कि रशिया के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि वो जिस एरिया में जहां इतनी देर से सिर्फ पश्चिम का इन्फ्लुएंस रहा है और सारी पॉलिटिक्स जो कोल्ड वॉर की थी कि रशिया को किसी तरीके से मिडल ईस्ट से हटाया जाए, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो ये तो जाहिर है कि रशिया अब मिडल ईस्ट में प्लेयर बना है जिसको इग्नोर नहीं कर सकते।
कंवल सिब्बल कहते हैं कि सीरिया को लेकर भले ही रूस की हर बात न मानी जाए लेकिन उसके बिना समाधान मुमकिन नहीं है। इराक में भी रूस का प्रभाव बढ़ रहा है। सीरिया में एक साथ दिखने वाली रूस, ईरान और तुर्की की तिकड़ी के साथ इराक भी जुड़ गया है। सिब्बल याद दिलाते हैं कि अफगानिस्तान में भी रूस का असर बढ़ रहा है।
अफगानिस्तान के सिलसिले में देखिए, अब रशिया इनिशिएटिव ले रहा है, तालिबान को एंगेज कर रहा है, कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है मॉस्को में, जिसमें लास्ट कॉन्फ्रेंस में यूएस एम्बेसी जो रशिया में, उन्होंने भी भाग लिया, हमारी तरफ से भी हमने भाग लिया।
अमेरिका और चीन के बीच छिड़े ट्रेड वॉर की वजह से चीन और रूस के रिश्ते गहरे हो रहे हैं। इनके बीच सैन्य और आर्थिक साझेदारी भी बढ़ रही है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक रूस में साल 2017 में चीन का प्रत्यक्ष निवेश 72% बढ़ा है। फिलहाल चीन सबसे ज्यादा तेल रूस से ही खरीदता है। अनुराधा चिनॉय दोनों देशों के बीच गहराती दोस्ती की वजह बताती हैं।
उसकी दोस्ती चाइना के साथ अब ज्यादा हो रही है और एक तरीके की स्ट्रेटेजिक समझ चीन के साथ है। उनको लगता है कि उनके वो जो ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं वो अब सिक्योर हैं और अलायंस भी है, और उनकी ये भी समझ है कि सीरिया में वेस्टर्न देश खासकर अमेरिका टेररिस्ट किस्म के लोग हैं उनको आगे बढ़ा रहा है।
रूस रणनीतिक संबंधों के जरिए आर्थिक स्थिति को भी सुधारने में लगा है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन रूस में ही होता है। कंवल सिब्बल कहते हैं कि वो दूसरे देशों की हथियार जरूरतें भी पूरी कर रहा है।
रूस तो कई देशों को वेपन बेच रहा है। हिंदुस्तान के साथ तो खास रिलेशनशिप है, लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान के प्रतीक नहीं, वियतनाम, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया से भी बातचीत चली, टर्की से भी बातचीत चली। चीन को ये बहुत ही आर्मामेंट दे रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा पुराना इंस्ट्रूमेंट है इन्फ्लुएंस का।
रूस के बढ़ते दबदबे की कहानी पर उस वक्त दाग दिखते हैं जब अमेरिका और पश्चिमी देश उस पर दूसरे देशों में दखलंदाजी करने और उन्हें कमजोर करने की कोशिश का आरोप लगाते हैं। जॉर्जिया और यूक्रेन के साथ विवाद को लेकर रूस को आरोपों का सामना करना पड़ता है। साल 2016 में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में रूस पर दखलंदाजी का आरोप लगा। इस साल ब्रिटेन में रूस के पूर्व जासूस और उनकी बेटी पर नर्व एजेंट से हमला हुआ तो भी रूस पर आरोप लगे। रूस इन सभी आरोपों को गलत बताता रहा है। कंवल सिब्बल को भी लगता है कि सिर्फ रूस को गलत ठहराना ठीक नहीं होगा।
जितना इंटरफेरेंस अमेरिका और यूरोप करते हैं दूसरे देशों के इंटरनल अफेयर्स में, रशिया तो बहुत रिलेटिवली कम करता है, अगर करता है तो अगर कहना कि भाई इन्होंने यूएस इलेक्शंस में इंटरफेयर किया, मैं वेस्टर था रूस में, मैं जानता हूँ ये कितना इंटरफेयर कर रहे थे इंटरनल डोमेस्टिक रशियन पॉलिटिक्स में और पुतिन के खिलाफ।
रूस को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों की नाराजगी बढ़ रही है। रूस और पुतिन के लिए आने वाले दिन मुश्किल बताए जा रहे हैं, लेकिन अनुराधा चिनॉय की राय अलग है।
अब तो वो नेशनलिज्म, एक्स्ट्रा नेशनलिज्म, ओवर नेशनलिज्म, जेनोफोबिक नेशनलिज्म, वो तो बढ़ेगा ही रूस में, और वो एक स्टेटस सोसाइटी है तो ये पुतिन का हाथ मजबूत हो जाएगा।
कंवल सिब्बल भी ऐसी ही राय रखते हैं।
एक बात तो स्पष्ट है कि पुतिन की पॉपुलैरिटी अभी भी बहुत हाई है,
यानी पुतिन का रूस भले ही मुश्किलों के भंवर में डूबता उतरता सा दिखे, विश्लेषकों की राय में दुनिया में उसका दबदबा डंके की चोट पर बढ़ रहा है।
दुनिया जहां पेश कर रहे थे वात्सल्य राय, ये आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखें। और अब नजर डाल लेते हैं आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों पर। अखबारों के साथ विकास त्रिवेदी स्टूडियो में मौजूद हैं। जी विकास, बताएं।
शाहिद, बीते कुछ दिनों की तरह आज भी करतारपुर साहिब की खबरें अखबारों के पहले पन्ने पर बनी हुई हैं।
जी,
इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इमरान खान के बयान को शीर्षक बनाया है, जिसमें लिखा है कि भारत से समझौते के मामले में मेरी सरकार, सेना और दलों का एक ही सुर है। तस्वीर में इमरान के साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी दिख रहे हैं और इसको लेकर बाकी अखबारों में भी सिद्धू की तस्वीरें छपी हैं। इसी खबर के ठीक बराबर में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एसपी मलिक आज फिर खबरों में हैं। उन्होंने कहा है कि अपने आप में पता नहीं कब तबादला हो जाए, नौकरी तो नहीं जाएगी, तबादला का खतरा रहता है।
भारत प्रशासित कश्मीर और पाकिस्तान और ये सारी चर्चाएं जो अखबार,
जी जी जी, और उन्होंने जो भी एक दिन पहले ही कहा था कि अगर मैं दिल्ली की तरफ देखता तो सज्जाद लोन को सीएम बनाना पड़ता,
उनका पुराना बयान था, उन्होंने आईटीएम जी जी।
हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें तो अखबार ने भी इमरान खान के बयान को अपनी पहली खबर बनाया है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो सुषमा स्वराज से जुड़ी हुई है। सुषमा ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद खत्म नहीं होता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी, यह सुषमा का बयान है। तो एक तरफ तो इमरान खान के बात करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत की सख्ती दिख रही है।
और सार्क सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
जी,
जो
जी
बुलावा था उसको भी
हाँ ठुकरा दिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में कश्मीरी पत्रकार सुजात बुखारी की हत्या के जो आरोपी थे नवीद जट, उनको बडगाम में मारे जाने की खबर को जगह मिली है। बाकी अखबारों ने भी जगह दिया, कुछ अखबारों ने उसको कशाप का दोस्त बताया। इसके अलावा अगर बात करें जनसत्ता की, तो जनसत्ता की खबर है कि पीएम मोदी ने कहा है कि देश के पहले प्रधानमंत्री अगर सरदार पटेल होते तो ज़्यादा सुखी होते किसान। उन्होंने कहा कि पटेल एक किसान के बेटे थे और वो किसान की समस्याओं को समझते थे। इत्तफाक आप ये देखिए कि आज दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन भी होना है, आज और कल जुटना है, लेकिन अगर ज़्यादातर अखबारों को देखा जाए तो किसी ने भी बहुत प्रमुखता से खबर को नहीं छापा है किसानों के प्रदर्शन को। एसटी ने, हिंदुस्तान टाइम्स ने एक बहुत छोटी सी लिखा है कि आज किसान आ सकते हैं।
और देख लीजिए ना विकास के, किसान हर लगभग कितने समय से, जब से 2014 से सरकार बनी, लगातार दिल्ली में आ रहे हैं और बहुत प्रदर्शन हो रहे हैं। और जिस तरीके की चर्चाएं और जिस तरीके के प्रदर्शनों को जगह मिलनी चाहिए उसमें हम लोग बहुत कमी देखते हैं। अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास। और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं ड्रिबल, पास और फ्लिक की दुनिया में, यानी कि हॉकी की दुनिया में। और हॉकी की दुनिया में चहल पहल है हॉकी विश्व कप की, जो भुवनेश्वर में खेला जा रहा है। भारत का बुधवार को यानी कि कल विश्व कप हॉकी का ग्रुप सी का मुकाबला हुआ और इसके अंदर दक्षिण अफ्रीका के साथ हुए मुकाबले में 5-0 से भारत ने दक्षिण अफ्रीका को रौंद दिया। भारत की तरफ से सिमरनजीत सिंह ने 2, मनदीप, ललित उपाध्याय और आकाशदीप सिंह ने 1-1 गोल दागा। भारत ने मैच में पूरे समय दबदबा बनाए रखा और दक्षिण अफ्रीका टीम को मैच में लौटने का कोई मौका ही नहीं दिया। इस टीम की कमान संभाल रहे हैं मनप्रीत सिंह और मुकाबले के 10 मिनट बाद सबसे पहला गोल किया था मनदीप सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर से और फिर 12 मिनट पर हुआ था आकाशदीप सिंह के द्वारा दूसरा गोल। 2 गोल पेनल्टी कॉर्नर से हुए और 3 गोल फॉरवर्ड से। तो वहीं बेल्जियम और कनाडा के बीच हुए मुकाबले में बेल्जियम ने 2-1 से कनाडा को हरा दिया। और आज मुकाबला है अर्जेंटीना का स्पेन के साथ और न्यूजीलैंड का फ्रांस के साथ। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच 5 बजे मुकाबला शुरू होगा, तो वहीं न्यूजीलैंड और फ्रांस का 7 बजे से। और हॉकी की दुनिया से अगर आपको बैडमिंटन कोर्ट पर लेकर चले तो वहां पर खबर उतनी अच्छी नहीं है। भारतीय खिलाड़ी सौरभ वर्मा और पारुपल्ली कश्यप को कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। इन दोनों की हार के साथ ही टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। दुनिया के पूर्व नंबर 6 खिलाड़ी पारुपल्ली कश्यप को 8वें क्रम के ली डोंग कुन ने 17-21, 21-13, 8-21 से हरा दिया था। तो वहीं विश्व नंबर 108 के फिनलैंड के हेनु ने सौरभ वर्मा को 21-13, 12-21, 21-18 से हरा दिया।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर विकास त्रिवेदी से।
बीबीसी समाचार। भारत के अलग अलग राज्यों से किसान अपनी मांगों के साथ आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। कई किलोमीटर की पैदल यात्रा कर दिल्ली आए ये किसान अगले 2 दिनों में दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इन किसान संगठनों की प्रमुख मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि और कर्ज माफी शामिल है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का कहना है कि यूरोपीय संघ से बिना समझौते के बाहर निकलना देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोजी के मुद्दे पर अमेरिका में कांग्रेस और ट्रंप प्रशासन के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं। खाशोजी केस को लेकर हुई एक सुनवाई में CIA की निदेशक मौजूद नहीं रहीं। इस पर अमेरिकी सीनेट के सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आएं हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।